ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం జ్ఞానానందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుర్మిళితాన్యేన తస్మై శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం సాయం రూపా వందేహం శ్రీగురు శ్రీగురు శ్రీరూపాం సహగ్నా రఘునాథన్ సద్వైతం సవధూతం వినాశన
శ్రీరాధు
బాణి హే కృష్ణ కీర్తన కల్లేనా మేరా లెక్చర్ తప్త కాంచన గౌరాంగి వాంచాయ హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్ భక్తో కా హార్దిక్ స్వాగత్. క్యూకి మే గలా అభి థోడా కమజోర్ హై, మే ఆధా ఘంటా బోలుంగా, ఉస్కే పశ్చాత్ కీర్తన కరేంగే యా కీర్తన కరేంగే. तो आज क्या है, तो आज है बड़ा शुभ दिन राधा श्री. राधा रानी जी को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है. हमारे आचार्यों ने कहा है कि राधा रानी जी की स्थिति को समझने के लिए भक्ति के मार्ग में जुड़ना पड़ेगा. आप कई बार देखते हो कि भौतिकवादी व्यक्ति या थोड़ी मात्रा में धार्मिक व्यक्ति भी हंसी उड़ाते हैं राधा कृष्ण की, है कि नहीं. कहते हैं अगर भगवान की इतनी सहेलियां हो सकती हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती. तो वो भूल जाते हैं कि सेलियां जो हैं भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त हैं, कोई साधारण भक्त नहीं है. वो इन सब में सबसे प्रथम भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी. प्रभुपाद जी जब छोटे थे जब भी वो राधा रानी के भक्त हैं. प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौर मोंडे और वो बकायदा संतों की सेवा करते थे. संतों को निमंत्रण देते थे, घर में रहने की सुविधा देते थे. और जब ये संत घर छोड़कर जाते थे तो प्रभा जी के पिता गौर मोंडे उनसे कहते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का प्रमुख भक्त बने. उनकी माता की इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ने इंग्लैंड जाए, पर पिता की इच्छा थी कि राधा रानी जी का ऊंचा भक्त बने. तो राधा रानी तत्व को समझने के लिए भक्ति एक साधन है. आप भागवतम के 10वें स्कंध में देखते हो कि भगवान की रासलीला का वर्णन है. पर रासलीला का वर्णन कहाँ है, पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे में नहीं, 10वें स्कंद में. और 10वें स्कंद में भी भालीला की चर्चा करने के पश्चात, क्योंकि जब तक व्यक्ति दसवें स्कंद में पहुंचेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि स्वयं भगवान कौन है, क्योंकि जब आप भगवान की बाललीला पढ़ते हो तो आप देख पाते हो ये कोई साधारण कार्य नहीं। छोटे से ही थे, पूतना राक्षसी का वध हुआ, तिनावर्ता अनेक और असुरों का, छोटे से ही थे या उन्होंने पूरे विश्व का दर्शन दिया किसे, अपनी माता को। छोटे से ही थे जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ की छोटी उंगली नाखून के बल पर। तो इन लीलाओं को जब आप पढ़ते हो, ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों ग्वालों को और बछड़ों को छुपा दिया था। भगवान ने जब देखा, ये सोच रहे थे अब मैं घर कैसे लौटूंगा, भगवान ने फिर से दिव्य लीला प्रकट की, अपने विस्तार कर लिया अनेक ग्वालों और बछड़ों के रूप में। तो जब आप ये बाल लीला पढ़ते हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कोई माइथोलॉजी है या फिक्शन है या किसकी कल्पना है। अफसोस की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई बहन भी कई बार ये सोचते हैं ये तो कल्पना है, वास किसने देखा है, इसका प्रमाण क्या है। जैसे एक बड़े प्रसिद्ध पॉलिटिशियन था भारत में, तो कहने लगा क्या है प्रमाण कि राम और कृष्ण प्रकट भी हुए थे। तो प्रमाण है शास्त्रों की वाणी, शास्त्रों के द्वारा ये भाव ये ज्ञान मिलता है। और बाल लीला की चर्चा करने के पश्चात आगे जाकर व्यासदेव जी रासलीला की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि वैदिक साहित्य को प्रकाशित किया जाए जल्दी से जल्द। पहले प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाने से पहले प्रथम स्कंद का अनुवाद किया, फिर अमेरिका जाके दूसरे स्कंद का अनुवाद किया, फिर एकदम प्रभुपाद जी ने भागवतम के दसवें स्कंद को कथा के रूप में प्रकाशित किया, कृष्ण बुक के रूप में। क्यों? प्रभुपाद जी ने समझाया हम भक्तों को कि उनकी इच्छा थी कि जल्द से जल्द पूरे मानव समाज को जो लीलाएं हैं यथारूप समझाया जाए। यह नहीं कि हर अनुवादक अपने भाव अपनी व्याख्या करे। प्रभुपाद जी चाहते थे भगवान की रासलीला और बाल लीला ठीक रूप से समझाए। तो राधा रानी जो हैं भगवान की सहेली नहीं, राधा रानी के पास 1,800 करोड़ गोपियां हैं। कितना? 1,800। राधा रानी को के सहयोग देने के लिए 1,800 करोड़, 630 मिलियन गोपियां हैं, और इन गोपियों का सदा एक ही भाव है। वो क्या है? वो भाव कृष्ण की सेवा। तो राधा रानी जो हैं सब भक्तों में सबसे प्रमुख भक्त है, और इसलिए अगर आप वृंदावन जाओ तो वहां क्या सुनते हो ज्यादा? जय राधे, जय राधे, है कि नहीं? भगवान आदि पुराना में कहते हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति ये कहे कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, वो जो कहे मेरे भक्त का भक्त है तो वो है मेरा भक्त। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हमें ये सोचना चाहिए हम राधा रानी के भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंद में थोड़ा सा वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में आप देखोगे कि राधा रानी की जी की चर्चा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक श्लोक है जहां अनादित शब्द प्रयोग किया गया है, दस स्कंद के तीसवें 28वें अध्याय में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया है कि अनादित शब्द का अर्थ है राधा रानी। अनेक गोपियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का हम भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे थे राधा रानी का कितना स्नेह है उनके प्रति, और इसको समझने के लिए भगवान प्रकट हुए किस रूप में? राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाय आनिया, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। जब आप गौणिता की पूजा करते हो तो इसमें राधा कृष्ण भी गिना जाता है। तो राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु, माता का नाम था कीर्तिदा। वृषभानु और कीर्तिदा बहुत धार्मिक थे, सदा सेवा में रहते थे। उनका विवाह हो गया था पर उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्या की, यज्ञ किए, पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो कीर्तिदा के कहने पर महाराज ऋषभानु ने यज्ञ किया, कात्यायनी का सेवा की, जिसके द्वारा उन्हें ये संदेश मिला कि उन्हें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ किए और फिर एक दिन जब वो तालाब में थे तो एक बहुत बड़ा कमल का फूल जिसमें हजार पेटल थे, पेटल को क्या कहते हैं, हजार पत्ते थे, और ये ऋषभानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। बहुत बड़ा लोटस, कमल का फूल हजार पत्तों के साथ आकर महाराज ऋषभानु को छू लिया। जब और ऋषभानु महाराज ने देखा उस कमल के फूल में एक छोटी लड़की थी जो पैदा हुई थी अभी, और जिसका रंग था गोल्डन, सोनार के रंग था। तो राजा इतने यज्ञ कर रहे थे कि उनकी कोई संतान हो, तो राजा खुश होकर वो कमल के फूल से वो लड़की को उठाकर घर ले गए और अपनी पत्नी कीर्तिदा को दिया देखभाल के लिए। कीर्तिदा बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उनकी इच्छा थी औलाद की, पर और ये जो लड़की थी इतनी खूबसूरत थी कि इतिहास में कोई इसकी तुलना नहीं कर पाएगा। वो अत्यंत सुंदर थी। तो कीर्तिदा ने उसकी देखभाल शुरू की, तो फिर उन्होंने देखा कि लड़की अंधी है, इतनी खूबसूरत, पर ऐसे लगा कि लड़की बहरी है, गूंगी है और अंधी भी है। तो एक तरह से तो माता पिता बड़े खुश थे कि संतान मिली है, दूसरी तरह से जब उन्हें पता लगा कि ये लड़की अंधी है, गूंगी है, बहरी है, तो बड़े दुखी हुए कि बेटी अंधी है, इसके पीछे में एक इतिहास, वो अंधी क्यों थी। तो नारद मुनि का केवल एक ही उद्देश्य रहता है, वो क्या है, क्या है नारद मुनि का उद्देश्य? भगवान का नाम का प्रचार करना। तो नारद मुनि उनका एक और नाम है थी कर गया। वो जानते हैं क्या बीती है, क्या बीत रही है और क्या बीतेगी। तो नारद मुनि को पता लग गया था कि भगवान ही प्रकट हो गए हैं, उनके जो सनातन साथी हैं अंतरंग शक्ति वो भी प्रकट हो गई है। नारद मुनि ने कहा चलो मुझे गोकुल के सब घरों में चलूं। अब सबसे पहले वो गए नंद महाराज के घर में। जब नंद महाराज के घर में गए, महल में पहुंचे, तो नंद महाराज के महल में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा यशोदा माता को और उनका छोटा बेटा जिसका नाम था मिस्त्री में पलंग में लेटे हुए। वो पलंग कैसे बना था? सोने का पलंग था, प्योर गोल्ड। अगर आप शास्त्रों से समझो उस समय जो ऐश्वर्य था आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकोगे, कल्पना भी नहीं कर सकोगे। तो नारद मुनि देख के पहचान गए कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं। फिर उनके मन में यह विश्वास था अगर भगवान प्रकट हो गए हैं तो उनकी जो सनातन अंतरंग शक्ति है वो भी प्रकट जरूर हो गई होगी कहा ना कहा। तो उन्हें यह पता नहीं था, कम से कम उन्होंने ये दिखाया नहीं कि वो कहाँ है, वो अंतरंग शक्ति कहां प्रकट हुई है। राधा रानी जो हैं भगवान से कितने दिन छोटी हैं? 15-16 दिन। भगवान का जन्मदिन कब था? कहीं उन्हें 17 को मनाया, कहीं उन्हें 18 को मनाया, तो मान लो 17। हमारे अच्छा बॉम्बे कैलेंडर में 17 था, उत्तर भारत के कैलेंडर में 18 था, तो 18 था तो 14 दिन हुए हैं कि नहीं, तो 14 या 15 दिन छोटी हैं। तो इनकी जो उम्र है ये सनातन है, ये बढ़ती नहीं है जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है। राधा रानी हमेशा 14 साल की रहती है। तो नारद मुनि पहुंच गए महाराज ऋषभानु के घर। ऋषभानु महाराज ने उनका स्वागत किया और ऋषभानु महाराज से नारद मुनि ने पूछा तुम्हारे घर में कोई बच्चे हैं? पिछले कुछ दिनों में कोई बच्चे पैदा हुए हैं? तो ऋषभानु ने कहा मेरा बेटा है श्रीराम। नारद मुनि श्रीराम से मिले, श्रीराम को आशीर्वाद दिया और ये कहा तुम भविष्य में कृष्ण और बलराम के घनिष्ठ मित्र बनोगे, दिन रात उनकी संगत में रहोगे। और जैसे नारद मुनि महाराज ऋषभानु का घर छोड़कर जा रहे थे, महाराज ऋषभानु ने कहा नारद मुनि संत महात्मा मेरी एक बेटी भी है जो इतनी खूबसूरत है कि हिमालय की बेटी की भी तुलना नहीं हो सकती उनके साथ, लक्ष्मी जी की भी तुलना नहीं हो सकती उनके साथ। ये बेटी बहुत खूबसूरत है पर अफसोस की बात यह है वो अंधी है, गूंगी है और बहरी है। आप आशीर्वाद दे सकते हो? जैसे आज के वातावरण में भी हम लोग जब जाते हैं प्रचार के लिए कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो ऋषभानु ने कहा मेरी बेटी अंधी है तो बहुत खूबसूरत, आप आशीर्वाद दे सकते हो। नारद मुनि को पूरा इतिहास पता था। क्या था इतिहास? भगवान ने निश्चय कर लिया था कि वो इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाले हैं और राधा रानी जो हैं उनकी अंतरंग शक्ति है हलादिनी शक्ति, जिनके मन में एक ही भाव रहता है भगवान की सेवा और कोई भाव नहीं रहता, चाहे उन्हें कष्ट भी भुगतना पड़े, उनके मन में एक ही भाव है। ये जो 1800 गोपियां हैं, 1800 करोड़ गोपियां, इन सब का भी एक ही भाव है, भगवान की सेवा। अगर कृष्ण संतुष्ट है तो हम संतुष्ट है, और अगर कृष्ण भगवान दुखी हैं तो हम दुखी हैं। और हम लोग का सिद्धांत क्या है, हमारी खुशी में भगवान की खुशी। जो कार्य मुझे संतुष्ट करता है वही भगवान को संतुष्ट करेगा। पर राधा रानी का भाव क्या है, जो भगवान की सेवा है उसी में हमारा सब। तो भगवान प्रकट होने वाले थे पृथ्वी पर, भगवान ने राधा रानी से भी कहा कि आपको भी प्रकट होना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा, नहीं, मैं भौतिक संसार में प्रकट नहीं होना चाहती, मैं किसी भौतिकवादी को नहीं देखना चाहती। अगर मुझे आप ये गारंटी देते हो कि सबसे पहले मुझे आपका ही दर्शन मिलेगा, सदा आपका दर्शन मिलेगा, तो ही मैं तैयार हूं भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए। तो भगवान ने कहा मंजूर है यह शर्त। इसलिए राधा रानी पैदा हुई थी अंधी, क्योंकि तो महाराज ऋषभानु ने कईयों के द्वारा प्रयास करवाया कि उनकी बेटी की आंखें ठीक हो जाए। एक दिन नंद महाराज और महाराज ऋषभानु अच्छे मित्र थे, और यशोदा माता और कीर्तिदा भी अच्छे मित्र थे। नंद महाराज और यशोदा माता आए किसके घर, ऋषभानु और कीर्तिदा। तो जब उनके घर आए तो यशोदा माता ने अपने एक गोद में बेटे को बिठाया, दूसरी गोद में राधा रानी को बिठाया। और जब भगवान दोनों बैठे थे एक एक गोद में, तो भगवान ने अपने हाथ को राधा रानी की आंखों में लगा दिया। तो जैसे ही आंखों में लगाया, उनकी नेत्र फिर से देखने लगे। शास्त्र में दो लीलाएं हैं इस विषय में। एक लीला यह है कि यशोदा माता की गोद में भगवान थे और दूसरे गोद में राधा रानी थी। छोटे बच्चे आप जानते हो जो खेलते हैं, भगवान ने उनकी आंखों को हाथ लगाया तो एकदम उनकी आंखें ठीक हो गई। और दूसरा भी इतिहास भी इसके बराबर ही है कि नारद मुनि ने इस बच्चे की प्रशंसा की और घर वालों को कहा, मैं बेटी लड़की के साथ अकेले चर्चा करना चाहता हूं। और जब उन्होंने कृष्ण भगवान का गुणगान किया कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, राधा रानी हालांकि कुछ दिनों की थी, जैसे उन्होंने कृष्ण का नाम सुना उनके सारे अंगों में आनंद प्रकट हुआ। और राधा रानी ने तुरंत ही नारद मुनि जी की प्रशंसा के लिए अपना किशोरी का रूप प्रकट किया। किशोरी का रूप है उनका सनातन रूप, जो कि है कितने सालों का, 15 सालों का। तो दूसरी कथा इस रूप से है कि फिर राधा रानी ने फिर से सदानंद बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया था, और फिर भगवान आए और भगवान ने उनको छुआ, जैसे ही छुआ उनके नेत्र ठीक हो गए। तो राधा रानी जो हैं उनमें अनेक गुण हैं। उनका रंग क्या है, गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है। एक तो उनकी खूबसूरती हर मिनट बढ़ते जा रही है, हर सेकेंड। राधा रानी की नहीं, जो गोपियां हैं उनकी खूबसूरती भी हर मिनट बढ़ते जाती है। आप उनकी गुणों को गिन भी नहीं सकते कि हर मिनट ये गुण जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि उनका जो सुनार रूप है सोने का, जब भगवान उनके सामने खड़े रहते हैं तो ये रूप का प्रभाव उन पर भी आ जाता है। तो गोपियां कौन हैं? भगवान की भक्त। तो जैसे मैंने कहा, भगवान की करोड़ों गोपियां, करोड़ों संख्या, तो ये करोड़ों गोपियों में 16108 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार सुनने में आता है 16108 गोपियां, नहीं 16108 नहीं, भगवान की 630 मिलियन गोपी हैं। तो करोड़ों 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 गोपियां हैं। तो ये करोड़ों गोपियों में 16108 प्रसिद्ध हैं। ये 16108 में 108 ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये 108 में कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं? जो 8 प्रसिद्ध हैं इन्हें क्या कहते हैं? अष्टसखे। आप में से कितने भक्तों ने मायापुर धाम का दर्शन लिया है? तो मायापुर धाम में अष्टसखी का दर्शन भी मिलता है, और इस्कॉन के जो तिरुपति का मंदिर है वहां भी अष्टसखी का दर्शन मिलता है। तो करोड़ों 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 गोपियों में ये 8 प्रसिद्ध हैं, और ये 8 में कितने प्रसिद्ध हैं? 4, इनमें फिर 2, और फिर परसों हमने ललिता जी का आविर्भाव तिथि मनाई थी। तो अष्टसखी इसमें सबसे प्रसिद्ध हैं ललिता। ललिता जो हैं राधा रानी को भी शिक्षा देती हैं, राधा रानी को भी डांट देती है, राधा रानी को कहती है तुम भगवान को मिलने जा रहे हो, कृष्ण को काजल ठीक नहीं लगाया तुमने। तो सारे जो अष्टसखी हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ललिता, और सब गोपियों में सबसे प्रसिद्ध हैं श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी प्रसिद्ध क्यों हैं? कि जो सेवा का भाव उनमें है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो राधा रानी को सबसे ऊंचे कोटि का भक्त माना जाता है, और उनके मन में यही भाव है भगवान की सेवा। ऐसे ऐसे तो कई उदाहरण हैं, जैसे भगवान जब द्वारका में थे तो उन्होंने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि आए थे भगवान को मिलने द्वारका, मुझे सिर दर्द हो रहा है, और ये सिर दर्द दूर होगा कैसे? मेरे भक्त के चरणों की धूल लगी, जैसे आप लोग टाइगर बाम लगाते हो या विक्स पेपर। तो भगवान ने कहा मेरे चरणों में भक्त के चरणों की धूल चाहिए। नारद मुनि ने कहा ये तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, सब खुशी से अपने चरणों की धूल देंगे आपके सिर दर्द को दूर करने के लिए। तो भगवान ने कहा नारद मुनि जाओ मैं भक्त के चरणों की धूल लाओ। तो नारद मुनि पहले आई सत्य बामा के पास, भगवान की पत्नी, सत्य बामा से कहा भगवान को गहरी सिर दर्द है, उन्होंने धूल चाहिए आपके चरणों की। सत्य बामा ने कहा मेरे चरणों की धूल ये तो अधर्म माना जाएगा, वो मेरे पति हैं, मेरे चरणों की धूल उनको कैसे छू सकती है, इसका तो अच्छा परिणाम नहीं होगा मेरे लिए। फिर वो गए रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी ने भी इनकार कर दिया। रुक्मिणी ने भी कहा ये तो अधर्म माना जाएगा, वो मेरे पति हैं। फिर वो गए ज्ञानियों के पास, योगियों के पास, सबके पास गए, सबने यही कहा कि अगर हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे को छुएगी तो बड़ा भयंकर परिणाम होगा। फिर नारद मुनि लौटकर पहुंचे द्वारका। नारद मुनि तो स्पेस ट्रैवल करते हैं, आप समझे, तेजी के साथ। ये नहीं आपने गुजरात से मथुरा जाना है तो आपको 18 घंटे लगेंगे। नारद मुनि तो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। नारद मुनि को यात्रा करने में कुछ देर नहीं लगती। दुर्वासा मुनि जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ हजारों शिष्य भी यात्रा करते हैं। तो नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे आई एम सॉरी, मैंने सोचा था आपके सारे भक्त एक पीछे करो, मैंने सोचा था आपके करोड़ों भक्त खुशी से देंगे धूल, पर सबने इनकार कर दिया किसी न किसी कारण, मैं शर्मिंदा हूं। भगवान ने उनसे पूछा तो तुम ब्रज में भी गए कि नहीं, जहां राधा रानी और मेरी अनेक गोपियां हैं। नारद मुनि कहा मैं हर जगह गया और ब्रज में नहीं गया। तो नारद मुनि फिर ब्रज में आए। आप सब जानते हो जब भगवान ब्रज छोड़कर द्वारका गए तो जो गोपियां थी अत्यंत दुखी हो गई थी। गोपियों के लिए एक पलक भी भगवान के बिना रहना कठिन था। गोपियों ने भगवान को दोष दिया था, नहीं भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को कहा आपने ऐसे आईलिड्स क्यों बनाए जिन्हें ब्लिंक करना पड़ता है, क्योंकि जब एक पल के लिए आंखें बंद करते हो तो आप भगवान का दर्शन नहीं ले सकते। आपके मन में कभी यह भाव आया है कि आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं, अगर ब्लिंक नहीं करती तो आप लगातार राधा राजकुमारी का दर्शन ले सकते थे, नहीं, क्योंकि हम बड़े पतित स्थिति में हैं। तो गोपियों ने ब्रह्मा जी को यह आरोप दिया था आपने आंखों को बनाने में एक नुक्स ये है, आंखों को बिल्कुल ब्लिंक नहीं करना चाहिए। तो जब नारद मुनि ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने देखा ये गोपियां और राधा रानी रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में आज भी बॉम्बे में बारिश बरस रही है, वैसे इन गोपियों और राधा रानी के आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो बैठे थे कहां, उस एंगल में जहां से द्वारका बिल्कुल सामने हो, वैसे बैठे थे। और क्यों रो रहे थे, क्योंकि भगवान द्वारका में थे। यही भगवान जब द्वारका छोड़कर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए थे तो राधा रानी और गोपियों को सूचना मिली थी कि भगवान कुरुक्षेत्र आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय। तो राधा रानी और गोपियां कुरुक्षेत्र पहुंच गई, वहां उन्होंने देखा भगवान सजे हुए हैं राजा के रूप में। तो उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की, हम प्रसन्न हैं आपको देखकर, पर हम आपको कहां देखना चाहते हैं, ग्वाले के रूप में, कहां, ब्रज में, तो चलो वृंदावन की ओर, वो है आपकी रथ यात्रा। जिस स्थान में रथ यात्रा शुरू होती है वो स्थान कुरुक्षेत्र माना जाता है, जहां रथ यात्रा समाप्त होती है वो स्थान को वृंदावन माना जाता है। तो जब नारद मुनि ने देखा राजरानी गोपियों सबकी नजर थी बिल्कुल द्वारका की तरफ, वो यही सोच रहे थे कब उन्हें भगवान की संगत मिलेगी। तो जब राजरानी ने नारद मुनि को देखा, पूछा, आप कोई सूचना लाए हो हमारे लिए, कोई खुशखबरी लाए हो? खुशखबरी मतलब भगवान इधर लौट रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान को बड़ी गहरी सिरदर्द हो रही है और उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने भक्त के चरणों की धूल चाहिए, आप लोग धूल देने को तैयार हो? राधा रानी और गोपी ने क्या कहा, धूल जरूर लीजिए। फिर राधा रानी ने पूछा, आप ये धूल उठाकर कैसे लेके जाओगे? तो नारद मुनि ने कहा, भक्ति के साथ, भक्ति के सहयोग से। फिर नारद मुनि जब पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि कितनी गहरी, कितना गहरा प्रेम है ब्रिजवासियों का राधा रानी का, कितना वो तरस रहे हैं क्योंकि भगवान ब्रज से दूर हैं, भगवान बड़े प्रभावित हुए। तो भगवान ने कहा, देखा मेरे राधा रानी और गोपियों का भाव, वो नरक में जाने को तैयार हैं क्योंकि मन में सदा एक ही भाव है, क्या? कृष्ण की सेवा। तो राधा रानी के उदाहरण को देखकर हम भक्तों में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम भी इन गुणों को अनुकूल करें। राधा रानी जी के हजारों गुण हैं, लाखों गुण हैं, पर महात्माओं ने 25 प्रमुख गुणों की चर्चा की है। अब सुनना चाहते हो? ये मत सोचे कि राधा रानी में सिर्फ 25 गुण हैं, उनमें है लाखों 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 गुण, पर हर मिनट उनके गुण बढ़ते जाते हैं, हर मिनट भगवान के गुण बढ़ते जाते हैं, इसलिए आप कभी भी उनकी गिनती नहीं कर सकते। पर हमारे आचार्यों ने 25 गुणों का वर्णन किया है। वैसे तो राधा रानी 64 किस्म की जो कला है उन सब में एक्सपर्ट है। तुंग विद्या जो गोपी है वो पशुओं से भी बात कर लेती है, पशुओं की भी हर बोली जानती है। तो राधा रानी और गोपियों में अनेक गुण हैं, पर हमारे आचार्यों ने संक्षेप रूप में 25 गुणों का वर्णन किया है। तो 25 गुण हैं, राधा रानी की असंख्य दिव्य गुण हैं, उनमें 25 गुण मुख्य हैं। पहला, राधा रानी देखने में बहुत मधुर और सबसे अधिक आकर्षक है, सबसे मधुर और सबसे खूबसूरत। दो, राधा रानी किशोर अवस्था में और सदा नवयुवती है। आप और हम तो उम्र में बढ़ते जाते हैं, सफेद बाल होते हैं, दांत गिरते हैं, बाल गिरते हैं। एक समय एक वकील था जिसकी मृत्यु आ रही थी, तो उस वकील ने यामराज जी से कहा, यामराज, यू कैन टेक मी सो फास्ट, आप इतनी जल्दी मुझे नहीं बुला सकते। यामराज ने कहा, क्यों? यू डिड नॉट गिव मी एनी नोटिस that I will be dying soon. आपने मुझे नोटिस पहले सूचना नहीं भेजी कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि वकील लोग अक्सर कैसे काम करते हैं, पहले आपको धमकी देते हैं ना, दो हफ्ते में ये करो नहीं तो ये सजा ये हो जाएगा। तो यामराज ने कहा, कौन कहता है मैंने तुमको नोटिस नहीं दिया है, मैंने तुम्हें इतने नोटिस दिए पर तुम उन्हें फाड़ते गए। तो यामराज ने पूछा, अब तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं? उस वकील ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल गंजा हूं, पहले 10-20 साल पहले कितने बाल थे? पूरे बाल थे। फिर आज तुम्हारे नेत्रों में कितनी शक्ति है देखने की, लगभग अंधा हो गया हूं। 25 साल पहले कितनी कैसी योग्यता थी, 20/20 बहुत तेज नजर थे। आज तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है, हाँ तो मुझे पार्किंसन डिजीज है, तो हाथ कांप रहे हैं। 25-30 साल पहले कितनी शक्ति थी, मैं तो अमेरिका की ओलंपिक टीम में था। यामराज ने कहा, मैंने कितनी नोटिस दी तुम्हें, तुम्हारे पैर कमजोर होते गए, तुम्हारे नेत्र कमजोर होते गए, तुम्हारे कान कमजोर होते गए, तुम्हारे बाल गिरते गए, तुम्हारी चीक स्रिंकल होते गए। ये नोटिस था कि मृत्यु आ रही है, पर तुमने सबको इग्नोर किया। अब चलो, तो हमें रोज नोटिस मिलता है। भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा गया है, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द ड्यूरेशन ऑफ एवरी वन बट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज बीइंग रिड्यूस्ड। रोज सुबह सूर्य जागता है, शाम को डूबता है, आपको एक संदेश देता है। क्या एक दिन कम रह गया है तुम्हारे जीवन में, पर आप कभी सोचते हो? चाणक्य पंडित ने कहा है, आयुष्य कशाना एक को पीना लभया स्वर्ण कोटी भी। एक पल का भी अगर दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। तो हमें समय का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक चर्चा नहीं करो, आवश्यकता से अधिक विश्राम नहीं करो, हर पल का उपयोग करो। किस लिए? भगवान की सेवा में। सारे विश्व के धन को लेकर अगर आप किसी को कहो मुझे 10 साल वापस चाहिए, 1 मिनट वापस चाहिए, आप नहीं ला सकोगे। तो हमारा जो शरीर है दिन पे दिन बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो भगवान का जो देह है वो इस प्रकार का नहीं है। अद्वैतम उच्यतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्मा जी ने हमें ब्रह्म संहिता दिया है, जिसमें बड़ी सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान के अनेक गुणों का वर्णन हो रहा है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम च। आप हो सबसे प्राचीन, सबसे पुराने, सबसे बूढ़े, नव यौवनम च, पर आप दिखते हो क्या? बिल्कुल नौजवान। तो वही है राधा रानी की स्थिति भी। राधा रानी जैसे लिखा है, किशोरी जैसे सदा नव युवकी रहती है। और भगवान अपने आप को अनेक रूपों, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान अच्युता है, अच्युता का अर्थ है जो कभी गलती नहीं करता, इनफेलेबल। और आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हो। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? भगवान अपने आप को नृसिंहदेव जी के रूप में प्रकट करते हैं, मछली के रूप में प्रकट करते हैं, बोर के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान जब नारद मुनि एक समय लौट रहे थे तो एक ब्राह्मण ने पूछा, अब भगवान के पास लौट रहे हो, पूछिए मुझे और कितनी देर इस भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा। और यही प्रश्न फिर एक मूची ने भी पूछा जो भक्त था। लंबी कथा है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। तो नारद मुनि ने जब भगवान को अपनी रिपोर्ट दी, प्रचार की, इन दो प्रश्नों का उत्तर पूछा, भगवान ने कहा, मूची को तो कह देना वो इस जीवन के समाप्ति पर मेरे धाम आ जाएगा, पर जो वो ब्राह्मण है उसे अनेक और जन्म प्रत्यय अनुभव करने पड़ेंगे। और अगर वो ब्राह्मण पूछे कि मैं क्या कर रहा था जब तुम मुझे मिले, तो कह देना मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। तो नारद मुनि समझ गए। तो नारद मुनि जब लौटे तो पहले लौटे वो उस ब्राह्मण के पास जिन्होंने शास्त्र को तो कंठस्थ किया हुआ था, तो भगवान की असीम शक्ति में पूरा विश्वास नहीं था। नारद मुनि ने उनसे पूछा, उस ब्राह्मण ने पूछा, आपने क्या भगवान से पूछा मुझे और कितनी देर भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा? भगवान ने कहा अनेक और जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे। अनेक, ब्राह्मण ने विश्वास नहीं किया, अनेक, मैं तो सोच रहा था इस जीवन की समाप्ति में भगवान के धाम जाऊंगा। अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम मिले उन्हें? जैसे आपको कभी शक हो तो आप क्रॉस एग्जामिन करते हो। तो उन्होंने कहा भगवान एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ब्राह्मण कहने लगा तुम अखौल कर रहे हो, यह संभव है क्या? हाथी को सुई के छेक से कोई निकाल सकता है? तो नारद मुनि समझ गए भगवान ने ऐसे क्यों कहा। और जब उस मोची को कहा कि भगवान हाथी को निकाल देते हैं सुई के छेक से, मोती तो खुशी में नाचने लगा। और जब नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, तुम विश्वास करते हो? मोची ने कहा ये जो बड़ा केले का पेड़ है ये भी पहले एक बीज में था ना, तो अगर भगवान एक बड़े पेड़ को बीज में डाल सकते हैं तो ये क्या कठिन है? भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। राजधानी की आंखें हिरनी जैसे चंचल हैं, राजधानी का मुख का चेहरा अथवा शक्ल मुस्कान है और सदा परमानंद युक्त है। तो इस प्रकार 25 क्वालिटीज हैं राजधानी की। आप सुनना चाहते हो सर? फिर ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो राजधानी के अनेक 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 गुण हैं। वो राजधानी क्या है? भगवान के ऊंचे कोटि के बाद राजधानी की का सहयोग देती हैं गोपियां, और गोपियों का सहयोग देती हैं बंजारी। हमारे जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं उन्हें बंजारियों का अवतार माना जाता है। और जैसे हमारे रूपा गोस्वामी जी जो रूपन गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूपन होगा। तो मंजारी इसका क्या भाव है, क्या काम है? सदा कृष्णा की गोपियों का सहयोग देना, कि इसलिए भगवान की सेवा करते। तो राधा रानी की अनेक लीलाएं भी हैं। एक समय राधा रानी और उनकी सहेलियां मथुरा जाना चाहती थी अपने सामान को बेचने के लिए। क्या था उन दिन में इनका धंधा? दूध बेचना, दही बेचना, मक्खन बेचना, कोई मोटर वगैरह का बेचने का उसको आदि नहीं था। प्राचीन समय में व्यक्ति की संपत्ति मानी जाती थी ये देखकर कितनी खेती है और कितने गायें हैं। और ये जो गायें थी सजी हुई होती थी हीरे मोतियों के साथ, और कई गायें थी जिनसे जो दूध निकलता था वो सुगंधित दूध था। महाराज नंदा के पास 9 लाख से अधिक गायें थी। वे 9 लाख से अधिक गायों में 8 गायें ऐसी थी जिनसे सुगंधित दूध निकलता था, अलग अलग फ्लेवर का। तो राधा रानी और गोपियां आई नाव लेने के लिए। बोटमैन, बोटमैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाविक। भगवान ने अपने आप को नाविक के रूप ग्रहण कर लिया था। तो गोपियों और राधा रानी बैठी नाव में और कहा हमें मथुरा जाना है यह माल बेचने के लिए। नाविक ने नाव चलाना शुरू किया। नाविक ने कहा, नाव को बीच में रोक दिया। मानसी गंगा उन दिन में बहुत बड़ी थी, बीच में नाविक ने नाव को रोक दिया। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो जो उनके पास सामान था बेचने के लिए वो थोड़ा थोड़ा खा लिया। फिर नाविक ने और नखरा किया, आगे जाकर फिर नाव को रोक दिया। राधा रानी और गोपियों ने कहा, क्यों रोक रहे हो बार बार? मेरी नाव पुरानी है, पानी अंदर आ रहा है, लगता है कि नाव में बहुत ज्यादा सामान है, तो जो भी आवश्यक नहीं है उसे फेंक दो। तो उन्होंने अपने गहने वहने निकाल कर सब फेंक दिए। फिर नाव वाला नावी आगे जाकर फिर नाव उसने रोक दी। ऐसे लगा कि नाव खतरे में है, डूबने वाली है। तो राधा रानी घबरा गई, वो नावे के पीछे खड़े हो गए। फिर उन्हें पता लगा वो नावे कौन था, स्वयं भगवान थे। तो इस प्रकार इनकी अनेक लीला है। एक समय राधा रानी गोपियों के साथ भगवान जंगल में थे। वृंदावन के 12 प्रमुख वन थे, याद है आपको, 12 वन थे। पर आज अब वृंदावन में जाओ एक वन भी नहीं मिलेगा, सब जगह बिल्डिंग बन गई है। तो वन में भगवान लाल रासलीला कर रहे थे और भगवान तुरंत ही छुप गए। भगवान के अनेक गुणों में एक है वैराग्य, ऐश्वर्य समाग रस्य यहां ना मेरा गया वैश्य व सन्न भागा तंगना। 6 गुणों में एक है वैराग्य। सारी गोपियां भगवान को खोजने लगी, कहां है। भगवान ने देखा जब वो आ रही हैं, तो भगवान ने नारायण का 4 हाथों का रूप तुरंत ग्रहण कर लिया। तो ये गोपियों ने आकर भगवान से पूछा, आपने यहां कृष्ण को देखा? वो हमारे साथ था, एकदम छोड़कर चले गए। तो वो गोपियां जो थी नारायण से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। वो गोपियां समझ नहीं सकी, पहचान नहीं सकी कि वो जो नारायण का रूप है ये भगवान श्याम सुंदर नहीं, नारायण का रूप उन्हें धोखा देने के लिए ग्रहण कर लिया है। फिर राधा रानी वहां पहुंची। राधा रानी जी के पहुंचने पर ही भगवान के जो 4 हाथ थे 2 हाथ पिघल गए। राधा रानी का इतना प्रभाव था कि 2 हाथ पिघल गए और भगवान को अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट करना पड़ा। फिर सब गोपियों ने इस पर समझ लिया, हाँ हमारे साथ धोखा हो गया था। कहा जाता है राधा रानी के शरीर में एक ऐसा प्रभाव है सुनार के रंग का कि जब भगवान उनके साथ खड़े रहते हैं तो उनके ऊपर भी ये सुनार का रंग का प्रभाव आ जाता है। राधा रानी हमेशा गोपियों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो एक समय रूपा और सनातन गोस्वामी उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा धनी राजा के शासन का राज्य कर रहे थे। रूपा गोस्वामी ने जब सरकारी नौकरी त्यागी, पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ जो उन्होंने बांटा। रूपा और सनातन और फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो 1 करोड़पति पिता के पुत्र थे, उनके पिता की आमदन उन दिनों में 5 लाख रुपए महीना थी। तो जब वो वृंदावन में आए सारा सुख त्याग दिया, मधुकरी करके रह रहे थे। मधुकरी आप जानते हो क्या है, घर घर जाकर उतना ही मांगना जितना की आवश्यक हो। तो एक दिन रूपा गोस्वामी, रूपा और सनातन और सारे गोस्वामी शास्त्र पढ़ते थे सारा दिन और फिर खाना खाते थे एक साथ। एक दिन सनातन गोस्वामी आए थे रूपा गोस्वामी के पास और रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि मेरे भाई को अच्छी खीर खिलाई जाए, पर वो सुविधा नहीं थी उनके पास घर में। तो राधा रानी क्या क्या, एक छोटी सी लड़की का रूप ग्रहण कर लिया। वो छोटी सी लड़की का रूप ग्रहण करके चीनी दूध दही इत्यादि लेकर राधा रानी के घर रूप गोस्वामी की कुटिया में पहुंच गए और रूप गोस्वामी से कहा, आप मधुकरी करने जाओ, मैं थोड़ा खीरियां बनाती हूं। जब रूप गोस्वामी लौटे मधुकरी करके और जब उनके भाई आए सनातन खाना खाने के लिए, सनातन ने जब सूंघा क्या खूबसूरत खुशबू, वो समझ गए यहां ये संभव है किसी दिव्य लीला के द्वारा। तो सनातन ने पूछा, कोई आया था क्या यहां घर में मैं खीर बनाने के लिए? तो रूपा ने कथा सुनाई, एक छोटी सी लड़की आई थी जिसने कहा, आप खीर खाना चाहते हो ना, मैं खीर बनाऊंगी, मैं तो मधुकरी करने चले गया था और वो खीर बना कर छोड़ गई है। सनातन ने कहा, वो छोटी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो छोटी लड़की कौन थी? श्रीमती राधा रानी। तुमने राधा रानी से सेवा ले ली, ये महान अपराध है, और उनको डांटा। माधवेन्द्र पुरी को जब पता लगा कि उन्होंने एक भगवान के हाथों का लोटा ले लिया था जिसमें दूध था, वो पछताने लगे। माधवेन्द्र पुरी उच्च कोटि के भक्त है, पर अभी समय नहीं है, साल बज गए। तो सनातन गोस्वामी ने अपने भाई को डांटा, तुमने राधा रानी से आज सेवा ले ली है, ये अपराध कैसे हुआ? तो हम भक्तों के मन में सदा ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, ये नहीं कि भगवान हमारी सेवा करें। भगवान गीता में कहते हैं, चार स्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विधा बजानते, जिसे धन चाहिए। धन आप सबको चाहिए या नहीं? जो जिज्ञासु है ज्ञान के आधार पर, और रोगी पीड़ित, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान के आधार पर रहता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली। जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं भगवान की सेवा में, वो सदा शांत रहते हैं। वो जो सकाम भाव से जुड़ते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए ये है, ये हमारा नखरा ये है, वो सकाम भाव से जुड़ते हैं, वो सदा अशांत रहते हैं। तो राधा रानी के रथाष्टमी के शुभ दिन पर हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति अनुकूल करें। एक समय एक गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसको उनकी एक बेटी थी, उसकी पत्नी रोज तंग करती थी, जाओ भीख मांग कर लाओ, बेटी की शादी करानी है, तुम घर बैठे रहते हो। तो ये गरीब ब्राह्मण भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करानी है, पर मेरे पास दहेज के पैसे नहीं है। भगवान ने जो राधा रानी जी का वजन था उतने गहने इस ब्राह्मण को मुफ्त में दे दिए। कितने गहने दिए? राधा रानी जी के वजन के समान था। तो एक समय एक जकौल को हिंदी, अच्छा जकौल, एक जकौल था जिसको छोटे बच्चों ने पीछा किया, वो जिसने जाकर अपने आप को छुपा लिया एक पेड़ के छेड़ में, फिर उन्होंने आगे से ताला मार दिया और फिर उसको आग लगा दी। आग लगाने में वो जकौल भी थोड़ा जल गया था, पर मरा नहीं। तो राधा रानी वहां से गुजर रही थी, उन्हें जाके देखा क्या हुआ है, इन्हें तो उस पशु को आग लग गई। तो राधा रानी जी ने कृपा करके उनके शरीर को फिर से युवक का शरीर बना दिया राधा ने की। तो इस प्रकार राधा रानी की अनेक लीलाएं हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड की भी लीला है। भगवान ने कंस ने इस असुरा को भेजा था भगवान का वध करने के लिए, और इस असुरा प्रकट होता किस रूप में, बैल के रूप में। भगवान को पता था ये असुर है कंस का प्रतिनिधि। कोई टाइम हो गया तो भगवान को पता था ये कौन है, ये बैल कंस ने भेजा है।
भगवान ने क्या किया,
भगवान ने एक मिनट में इस असुर का वध कर दिया। जब राधा रानी और गोपियों को पता लगा कि इस असुर का वध किया है, तो राधा रानी और गोपियों ने कहा तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम हमें छू नहीं सकते, तुमने तो एक बैल का वध किया है, ये कोई छोटा अपराध थोड़ी है। भगवान ने कहा वो बैल थोड़ी था, वो तो असुर था। ओके ओके राधा रानी जी की, राधा रानी जी से यही कृपा करो कि आप भक्ति में आगे बढ़ो और बोट फेस्टिवल में भी सब आना। हरे कृष्ण।